भूमिका। नागार्जुन की कविताओं का चयन जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी। उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषम भी। विषम इतनी कि इस ऊंची नीची भूमि में समतल की अभ्यस्त आँखें अक्सर धोखा खा जाती हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर तो अत्यंत सपाट वर्णन है, पर वह भी अपने समूचे असर में इतना कवित्वपूर्ण होता है कि काव्यत्व की किसी एक जगह पर उंगली रखना कठिन है। उदाहरण के लिए कविता है नेवला। कविता काफ़ी लंबी है। जेल का वातावरण, कैदियों के लिए नेवले के बच्चे की छोटी से छोटी हरकत भी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन उसका ब्यौरेवार वर्णन करते हैं रस ले लेकर। ताज़ा गोश्त का टुकड़ा सुतली में टंगा है और नेवला बार बार छलांग रहा है और गुस्से में चीख रहा है किर्र किर्र किर्र। अब कोई पूछ सकता है कि इसमें कविता कहाँ है। नेवला अंततः नेवला ही रहता है, कोई प्रतीक नहीं बनता। फिर भी जेल की ऊब और अमानवीय वातावरण में उस छोटे से प्राणी का क्रीड़ाकलाप कुछ ऐसा मानवीय प्रभाव पैदा करता है कि उसे कविता के अलावा और कोई नाम देना असंभव है। इसी तरह एक और कविता है लालू साहू, जिसमें 63 वर्षीय लालू 60 वर्षीय पत्नी की चिंता में अपने को डालकर सती हो गया। इस अनहोनी घटना में शायद वह कवित्व है जिस पर नागार्जुन की दृष्टि गई, वरना स्वयं उसके वर्णन में न कहीं भावुकता है न कहीं किसी तरह की कविता ही। कवित्व की इसी कोटि में मैथिल की जोड़ा मंदिर शीर्षक कविता भी आती है, जिसमें बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के मरने पर खेत में दोनों की याद में जोड़ा मंदिर बनवा देता है। जो वस्तु औरों की संवेदना को अछूती छोड़ जाती है वही नागार्जुन के कवित्व की रचना भूमि है। इस दृष्टि से काव्यात्मक साहस में नागार्जुन अप्रतिम है। उन्हें की बीहण प्रतिभा का एक मादा सुअर पर पैने दांतों वाली कविता रच सकती थी, जिसमें जमुना किनारे मखमली दूबों पर पूस की गुनगुनी धूप में पसर कर लेती है, भरे पूरे 12 थानों वाली छौनों को पिला रही है दूध। नागार्जुन अपने खास अंदाज में कहते हैं, यह भी तो मादरे हिंद की बेटी है। इसी तरह कटहल भी कविता का कोई विषय है, लेकिन नागार्जुन है कि पके हुए कटहल को देखकर पिहक उठते हैं। आह क्या खूब पका है यह कटहल, आह कितना बड़ा है यह कटहल, आह कैसा महमा करता है यह कटहल, आह किस तरह पड़ा है चारों खाने चित्त। यही कटहल उनकी एक अन्य कविता में अनूठे उपमान के रूप में इस तरह आया है, दरिद्रता कटहल के छिलके जैसी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। यह कटहल के छिलके जैसी जीभ नागार्जुन की ही बीहण कल्पना में आ सकती थी। नागार्जुन की यही कल्पना रिक्शा खींचने वालों, फटी बिवाइयों वाले, गुट्ठल घट्ठों वाले, कुलिश कठोर खुरदरे पैरों के चित्रण भी आंकती है और उसकी पीठ पर फटी बनियाइन के नीचे क्षार अम्ल विलगनकारी दाहक पसीने का गुणधर्म भी बतलाती है। मनुष्य के ये वो रूप हैं जो नागार्जुन न होते तो हिंदी कविता में शायद ही आ पाते। इसी तरह यथार्थ के वे रूप जिन्हें शिष्ट और सुरुचिपूर्ण कवि विभत्स समझकर छोड़ देना ही उचित समझते हैं, नागार्जुन की साहसिक कल्पना से काव्य का रूप प्राप्त करते हैं। प्रभु तुम कर दो वमन, होगा मेरी क्षुधा का शमन, ऐसी पंक्तियाँ लिखने का साहस नागार्जुन ही कर सकते थे। इसी प्रकार गांव में अश्लील और भदेश कहलाने का खतरा उठाकर भी वे फैल गया है दिव्य मूत्र का लवण सरोवर तथा एक दूसरे का गुहे अंग सूंघ रहे हैं जैसी पंक्तियों के द्वारा आज की कुत्सा को मूर्तिमान करने का साहस रखते हैं। वैसे संस्कृत काव्यशास्त्र में नौ रसों के अंतर्गत विभत्स की विगणना की गई है और खानापूरी के लिए थोड़ी बहुत विभत्स रस की रचनाएँ भी हुई हैं, किंतु नागार्जुन पहले कवि हैं जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में विभत्स को एक नई शक्ति प्रदान की है। नागार्जुन की इसी साहसिक प्रतिभा की अमर श्रेष्ठ है मंत्र कविता, जो कलात्मक प्रयोग में भी अप्रतिम है। यदि निरालागे की कुकुरमुत्ता सन 40 की मनोस्थिति के ऐतिहासिक दस्तावेज है तो सन 69 की मनोस्थिति को सशक्त वाणी नागार्जुन की मंत्र कविता में ही मिली। विडम्बना यह कि वो हमेशा हमेशा करेगा राज मेरा पोता, यह उक्ति जैसे भविष्यवाणी की तरह सच होने को आई, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नागार्जुन असाधारण के अवघड़ कवि हैं। उनकी कविता पर संसार वस्तुतः वह लोक सामान्य जीवन ही है जिसे अति सामान्य समझकर अन्य कवि आंखें मूंद लेते हैं। यदि आज की कविता में तंद्रुत मुस्कान, सिंदूर तिलकित भाल और एक बस ड्राइवर के सामने उसकी बच्ची द्वारा टांगी गई गुलाबी चूड़ियाँ देखनी हो तो नागार्जुन की कविता की दुनिया में ही जाना होगा। वे जिस ललक से निशा ट्रेस ओस की मुदियों से लदी अगहनी धान की दुद्धि मंजरियाँ देखते हैं और हुलस कर कहते हैं कि सूखे हुए दो भुट्टे सामने आए, तबीयत खिल गई। वह अपने गमई प्रकृति परिवेश के साथ मनुष्य के लगाव की उस अनुभूति का व्यंजक है जो आज दुर्लभ है। नागार्जुन के काव्य संसार का एक बहुत बड़ा भाग अनूठे प्रकृति चित्रों से सजा है जिनसे कवि की गहरी ऐन्द्रिकता और सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि का एहसास होता है। वर्षा और बादलों पर इतनी अधिक कविताएं निराला के बाद नागार्जुन ने ही लिखी हैं। एक और यदि यात्री के रूप में उन्होंने अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है तो दूसरी ओर किसान की तरह दिन दिन धा धमक धमक मेघ भजे का गीत भी मस्त होकर गाया है। वस्तुतः वर्षागम के अवसर पर ऋतु संधि का सहज बोध नागार्जुन को एक किसान की तरह होता है और कविता में उनके पूर्व संचित संस्कार उसी सहजता के साथ फूट पड़ते हैं। इसी प्रसंग में उनके जुगनुओं पर लिखी गई कविता याद की जा सकती है। गीली भादो रैन अमावस, कैसे ये नीलम उजास के अच्छत छींट रहे जंगल में। अपनी मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन ने वर्षा पर एक अद्भुत गीत लिखा है जो पदावली में विद्यापति की याद दिलाने के साथ ही ठेठ नागार्जुनपन को बड़ी खूबी से उजागर करता है। टेक है श्याम घटा सित बिजुरी रे गोया विद्यापति की पंक्ति हो। इसके बाद आते हैं स्वयं नागार्जुन। फाक इजोतक तिमिर तिमिरक थार, निविड़ विपन अति पातर धार, दरिदौर लक्ष्मी जनुहार, लोहक चादरित चाणिक तार। तिमिर के थाल में ज्योति की फाक, निविड़ विपिन में पतली सी धारा, दरिद्रता के गले में मानो लक्ष्मी का हार, लोहे की चादर पर चांदी का तार, यह है श्याम घटा में बिजली उजली बिजली की रेखा। प्रकृति की तरह ही नारी सौंदर्य को भी नागार्जुन उसी खुली दृष्टि से देखते हैं और वैसे ही अकुंठ भाव से उसका वर्णन भी करते हैं। मैथिली की ही एक कविता है, एक फांक आंख एक फांक नाक, जिसमें पल भर के लिए खिड़की के गोरे गोल मुखचंद्र का अर्धांश तक जाने के बाद कवि कहता है, कितनी देर तक रही नाचती कपाल के भीतर की कटोरी में, धारण किए क्रमशः तकली का रूप, एक फांक आंख एक फांक नाक। इसके अतिरिक्त तन गई रीढ़ और यह तुम थी जैसी कविताएं भी हैं जहां स्त्री के दरस परस से उत्पन्न होने वाली अनिर्वचनीय अनुभूति को शब्दों में साकार किया गया है। नागार्जुन ने अपने बारे में भी कई कविताएं लिखी हैं। ये ऐसी कविताएं हैं जिनमें कवि ने पारदर्शी ईमानदारी के साथ अपनी दुर्बलताओं, अपने संदेहों, अपनी व्यथा और अपनी निष्ठा को वाणी दी है। इस दृष्टि से खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता संग्रह की, इन सलाखों से टिका कर भाल, थकित चकित भ्रमित भग्न मन और प्रतिबद्ध हूँ शीर्षक तीन कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब कवि जेल की सलाखों से भाल टिका कर सोचता है तो उसे तुरंत याद आ जाता है कि इससे जाने किस तरह किसकी दाल गलेगी। इसी प्रकार जब मन थकित चकित भ्रमित भग्न होता है तो उसे आशंका होती है, तो क्या मुझे भी बुढ़ापे में पुष्टई के लिए वापस नहीं जाना है किसी मटके अंदर। इस क्रम में सबसे दिलचस्प है अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा। नागार्जुन प्रतिबद्ध ही नहीं, संबद्ध भी हैं और आबद्ध भी। प्रतिबद्ध हैं अपने आप को भी व्योमोह से बराबर उबारने की खातिर, संबद्ध हैं सबसे और किसी से नहीं और न जाने किस किस से, आबद्ध हैं सजन परिजन के प्यार के डोर में, बहुरूपा कल्पना रानी के अरिंगन पाश में, तीसरी चौथी पीढ़ी के दंतरित शिशु सुलभ भाष में। कहने की आवश्यकता नहीं कि नागार्जुन के ये विचार आचार से पुष्ट हैं, इसीलिए इनमें सच्चाई की ताकत है। किंतु नागार्जुन के सबसे अधिक मोहक और आत्मिक कविताएं वे हैं जिनमें वे स्वयं अपने ऊपर हंसते और कहते हैं, यह वन मानुष, यह 70 साल आओ जुबक, उमंग में भरकर सिर के बाल नोचने लग जाता है, अकेले में बजाने लगता है सीटियां आए दिन। जो कभी अपने प्रति इतना निर्मम है, उसे दूसरों के प्रति भी निर्मम होने का पूरा अधिकार है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नागार्जुन इसी अधिकार के साथ आज की व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। इस प्रहार में धार वहाँ आती है जहाँ आवेश संयत होकर व्यंग का रूप लेता है और कत्थई दांतों की मोटी मुस्कान बेतरतीब मूछों की थिरकन बन जाती है। जब वे देखते हैं कि कांग्रेसी नेता दिल्ली से लौटे हैं कलटिकट मार के, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, तो नागार्जुन आए दिन बहार के गाते हुए नाचने लगते हैं। इसी तरह भारत में ब्रिटेन की रानी के आने पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने गाया, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। एक जगह नौटंकी के गीत की और दूसरी जगह लोकगीत की छोंक लगाकर नागार्जुन ने व्यंग की अनूठी धार दे दी है। व्यंग की इस विदग्धा ने ही नागार्जुन के अनेक तत्कालीन कविताओं को काल्य बना दिया है, जिसके कारण वे कभी बासी नहीं हुई और अब भी तात्कालिक बनी हुई है। अन्य कविताओं की तात्कालिक कविताओं में नागार्जुन की तथा कथित तात्कालिक कविताओं की यही विशेषता है। इसीलिए निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। नागार्जुन के काव्य में व्यक्तियों के इतने व्यंग्य चित्र हैं कि उनका एक विशाल एल्बम तैयार किया जा सकता है। नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है न नई कविता के प्रसंग में, फिर भी कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं। जैसे सिद्ध छंदों में वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर। उनके बात करने के हजार ढंग हैं और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। तुलसीदास और निराला के बाद कविता में हिंदी भाषा की विविधता और समृद्धि का ऐसा सृजनात्मक संयोग नागार्जुन में ही दिखाई पड़ता है। वैसे नागार्जुन में उबड़ खाबड़पन भी कम नहीं है। इनके कारण कवि कोविदों के बीच उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होने में विलंब हुआ, किंतु भाव स्थिर होने और सुर सज जाने पर ऐसी ढली ढलाई कविता निकली है कि बड़े से बड़े कवि को भी ईर्ष्या हो। कहना न होगा कि नागार्जुन में ऐसी कलापूर्ण कविताएं काफ़ी हैं। नागार्जुन की इन कविताओं की विशेषता यह है कि ये कलात्मक होने के साथ ही लोकप्रिय भी हैं और जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, नागार्जुन ने लोकप्रियता और कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य की समस्या को जितनी सफलता से हल किया है उतनी सफलता से बहुत कम कवि हिंदी में भिन्न भाषाओं में भी हल कर पाए हैं। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसकों की गोष्ठी तक है। नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि हैं। नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली के अलावा संस्कृत और बंगला में भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं, किंतु यहाँ उनके सिर्फ हिंदी और मैथिली कविताओं से ही चयन किया गया है। मैथिली के काव्य संकलन पत्र हीन नग्न गाथ से कुल 12 कविताएं ली गई हैं और उनमें से भी मूल मैथिली में सिर्फ 2 गीत ही शेष हैं। शेष के श्री सोमदेवकृत प्रमाणिक हिंदी अनुवाद ही दिए गए हैं। हिंदी कविताओं का चयन करते समय यह ध्यान रखा गया है कि कोई प्रकाशित काव्य संकलन छूटने न पाए। इसके अतिरिक्त कुछ कविताएं कवि की डायरी से भी ली गई हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं, पर ऐसी कविताएं 10 से अधिक नहीं हैं। कुल मिलाकर भरसक कोशिश यही रही है कि कवि की काव्य प्रतिभा का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो जाए। कविताओं का क्रम कालानुसारी न होकर विषयानुसारी है, जो सुधी पाठकों से अनदेखा न जाएगा। फिर भी सुविधा के लिए प्रत्येक रचना के नीचे उसका रचना काल दे दिया गया है। कविताओं के चयन की पूरी जिम्मेदारी संकलनकर्ता की है, फिर भी अंतिम संचयन स्वयं कवि के दिखलाकर उसकी मुहर लगवा ली गई है। नामोर सिंह, 15/12/1984।